हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, प्रार्थना के अंतर्गत हम चौथे स्कंद के 20वें अध्याय में पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100 यज्ञ के समय इंद्र को इंद्र आसन के ऊपर 100 यज्ञ करने वाला बैठ सकता है। पृथु महाराज से ईर्ष्या और द्वेष हो गया और उसके यज्ञ का घोड़ा चुराने लगे। 2 बार चुराया, साधु के वेश में चुराया। अत्रि पुरोहित ने मना किया और उस वक्त ब्रह्मा जी ने आके कहा कि बेटा क्या यज्ञ करने की है पृथु, आपको भगवंत अवतार हो, आप यज्ञ को समाप्त कर दो। आज इंद्र साधु के वेश में चोरी कर रहा है, कल ऐसे साधु के वेश में लोग चोरी करने लगेंगे तो बहुत बड़ा उत्पाद मच जाएगा संसार के अंदर। और पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और 100वां यज्ञ पूरा करने के बजाय समाप्त किया। उस समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए, परंतु भगवान विष्णु अकेले नहीं आए, इंद्र को साथ लाए। और वो इंद्र जो पृथु के यज्ञ को निष्फल बनाने के लिए उसके यज्ञ का अश्व घोड़ा चुरा रहा था, और भगवान दोनों में समझौता कराने लगे, पृथु महाराज को उपदेश देने लगे कि शरीरों के स्तर के ऊपर तो द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, भेद होता है, परंतु जो आत्मा के स्तर पे होता है उसके अंदर ऐसा कोई भेदभाव होता नहीं है। और पृथु आप तो भक्त हो, आपको क्षमा कर देनी चाहिए इंद्र को। और भगवान ने कहा कि मैं अति प्रसन्न आपसे हुआ हूं, आपको जो चाहे मुझसे वर मांग लो। इंद्र बड़ा लज्जित होकर पृथु के चरण छूने के लिए नीचे झुका और पृथु महाराज ने उसको गले लगा दिया, उसको क्षमा कर दी। और केवल क्षमा नहीं कर दिया, उसको अपने हृदय से लगा लिया। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ऐसे बहुत उदाहरण इतिहास में हैं जहां भक्तों ने अपराध करने वालों को क्षमा कर दिया, जैसे अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा को क्षमा कर दिया, उसको भी गले लगा दिया। आवाज तो है, हरे कृष्णा, आवाज नहीं है, हरि बोल, आवाज है कि नहीं है, हरे कृष्णा, हरि बोल, आवाज है कि नहीं है प्रभु, हरे कृष्ण, आवाज है नहीं है, साउंड है, और अच्छा ठीक आ रही है तो अभी चला रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सो पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया और प्रभुपाद जी ने लिखा कि ऐसे भक्त अपराधी और द्वेषी को क्षमा करते हैं, और केवल क्षमा भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, मैत्री कर देते हैं। ये अति उत्तम शिक्षा भगवान के सामने। इंद्र को जब क्षमा किया, भगवान ने वर मांगने को कहा, तो उस वक्त पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए हैं। तब प्रभुपाद और भगवान उपदेश दे के जाने वाले थे, परंतु पृथु के इस अति उत्तम अपराधी को क्षमा करने वाले उदार भाव को देखा तो भगवान रुक गए, जाने के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। तो ये श्लोक हम 20वां पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्थानाभिमुखो अपि एनम्। प्रस्थान अभिमुखो, भगवान जाने के लिए तैयार था क्योंकि उपदेश कर दिया था। ये भी कह दिया कि आपके यहाँ संत आएंगे, 4 कुमार आएंगे, आपको संग मिलेगा। भगवान का दर्शन हुआ, उपदेश मिला, फिर भी संतों के संग का आशीर्वाद दिया और भगवान जाने के लिए तैयार हुए। अनुग्रह विलंबित, परंतु अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उसके हृदय में, भगवान के हृदय में पृथ्वी के लिए जो प्रेम उत्पन्न हुआ उसके लिए विलंबित थोड़ी देर के लिए रुक गए, जाने के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे द्वारका के लिए रवाना हो रहे थे हस्तिनापुर से, कुंती महारानी की प्रार्थना और युधिष्ठिर महाराज के प्रेम को देखकर प्रोग्राम को रोक दिया। तो भगवान अपने जाने के प्रोग्राम को भक्तों के स्नेह से रोक देते हैं। पश्यन पदम पलाक्षो, क्यों रोक दिया? क्योंकि कमल नयन भगवान को देखते हुए जो पृथु महाराज के भाव थे उन भावों से भगवान बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। पश्यन पदम पलाक्षो, पदम पदम पल अक्षो, अक्षो का मतलब भगवान की आंखें पदम पत्र की तरह, कमल के पत्ते की तरह लंबी लंबी आंखें, लाल निशान उसके अंदर, उनको देख न प्रतस्थते सुहृत सताम। भगवान ने प्रस्थान को रोक दिया क्योंकि भगवान शुभ चिंतक हैं, सुहृद हैं, किसका? भक्तों का। भक्तों के प्रेम के कारण भगवान रुक गए। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं सुहृद सताम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान सदा ही अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनका हित करते हैं। सुहृद का मतलब हितेशी। प्रभुपाद जी अपने सारे शिष्यों को लिखने वाली चिट्ठियों के नीचे लिखते थे आपके शुभ चिंतक। जो आपके शुभ चिंतक सुहृद आपके, तो चिट्ठियों के सबके अपने शिष्यों के चिट्ठियों में सुहृद लिखते थे। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, गुरु शिष्य से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए शब्द होता है सुहृद। सुहृद मित्र और बंधु, ये शब्द लगते एक जैसे हैं लेकिन सब में अंतर है। सुहृद की माना है, अर्थ है, परिभाषा है कि आप चाहे कुछ उत्तर दो न दो, सेवा करो न करो, परंतु आपका भला करना ही है, इसको कहते हैं सुहृद। मित्र है कि आप काम आओगे तो हम आपके काम आएंगे, ये है मित्र, आप करो तो करेंगे। और बंधु हैं वो भी, आप जाओगे आओगे तो खिलाओगे खाओगे तो आएंगे जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। एक भगवान सुहृद है, एक माता सुहृद होती है। माता पिता सुहृद होते हैं, बच्चे चाहे सेवा करें न करें परंतु हमेशा उनका हित चाहते। एक गुरु सुहृद होता है, शिष्य हरे कृष्णा, शिष्य चाहे गलती करे फिर भी उसका हित ही चाहते हैं, और भगवान सबका सुहृद है। तो भगवान लिखते हैं सुहृद मौत, भगवत गीता में भगवान ने कहा है समो हम सर्वभूतेषु, मेरा सबके साथ तो समान भाव है परंतु अपने भक्तों को मैं भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि भक्त मेरे हृदय में और मैं भक्त के हृदय में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बाप के कितने ही बेटे हों लेकिन एक जो सेवाधारी है उसको बहुत प्रिय लगता है। है तो सब, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, सबको पढ़ाना लिखाना है, वो तो कर ही रहे हैं। ऐसे भगवान सबके लिए बराबर है, सबको हवा दे रहे हैं सांस लेने के लिए, भोजन की व्यवस्था सबके लिए, सूर्य सबके लिए, परंतु स्नेह और प्रेम जो है वो विशेषों के लिए है। और इसके लिए प्रभुपाद ने यहाँ अद्भुत उदाहरण दिया है, पिता अपने सेवक पुत्र से अधिक स्नेह करता है। इसके लिए भगवद गीता का ये श्लोक अद्भुत प्रभुपाद ने ऐसे दिया, तेषाम सत्ययुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्ध योगम तम ये नमाम उपयान्ति थे। अब ये श्लोक यहाँ देने का कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में अपने से मिलने के लिए बुद्धि योग देते हैं। इसका मतलब सुहृद भगवान का क्या करते हैं अपने भक्त के लिए, उसके हृदय में भगवान के पाने का रास्ता स्वयं बताते हैं। अगर कहीं कुछ दोष रह जाए तो उसको भगवान धो देते हैं। तो ये भगवान के सुहृद की परिभाषा है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान है तो सबके हृदय में, परंतु सबके हृदय में बैठे हैं साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, उदासीन बनकर। परंतु भक्तों के लिए वही भगवान मार्गदर्शन हो जाते हैं, उंगली पकड़ के चलाने का काम करते हैं। इसलिए भक्त कहीं गलती नहीं कर सकता, भक्त को गलत मार्ग के जागु पर जाने ही नहीं देंगे। और ये भगवान का भक्तों के प्रति पक्षपात है। ब्रह्मा जी लिखते हैं कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, इसलिए मेरी वाणी कभी गलत नहीं बोलती। नमे भारती, भारती कहते हैं वाणी को, मेरी वाणी गलत बोलती नहीं है, मेरा विचार गलत मार्ग पे जाता नहीं है, क्योंकि भगवान मेरा अंदर से मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैंने उनको हृदय में विराजमान कर लिया है। आगे पृथु महाराज की स्थिति को वर्णन करते हुए लिखते हैं, व्यासदेव सुखदेव महाराज बोल रहे हैं परीक्षित को और विदुर जी को मैत्रेय जी सुना रहे हैं हरिद्वार में। सादिराजो रचितांजलि हरिं विलोकितं नासक न आ न असक्त अश्रु लोचन न किंचन उवाच सबाश पविकल्लवो हृदय उपगुहियाम अमुम अदाद अवस्थिति अवस्थित स आदि राजा। वो पृथु को कहते हैं, पृथु को कहते हैं आदि राजा। पृथु शब्द का अर्थ है प्रथम, प्रथम मतलब पहला। ये पहला भगवान का शक्ति अवेश अवतार है, जो है जिसने राजा का कार्य कैसे होना चाहिए ये सिखाया है। तो पृथु को कहते हैं आदि राजा, जैसे भगवान आदि पुरुष है ऐसे पृथु आदि राजा है। स आदि राजा रचिता अंजले, रचित अंजले, रचित अंजले, दोनों हाथ अपने जोड़ लिए भगवान के सामने प्रार्थना के भाव से, हरिम हरि के सामने। विलोकितम देखना चाह रहे थे, पर तो देख नहीं, न असक्त अश्रु लोचना, आंखों में इतने अश्रु बह रहे थे आनंद के, उनको अष्ट सात्विक हरे कृष्णा उनको अष्ट सात्विक भाव ऐसे प्रकट हो रहे थे, अश्रु बह रहे थे, इसलिए आंखों से भगवान को देख नहीं पा रहे थे। हाथ जोड़ ले रहे लेकिन आंखों में आंसू की धाराएं बह रही थी, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था। ना किंचन अवाच, और बोल भी नहीं पा रहे थे। बोल क्यों नहीं पा रहे थे? सभाषप विलो विकल्लवो, गला रुंध गया था, न बोलने के लिए गला काम कर रहा था, न देखने के लिए आंखों से अश्रु बह रहे थे, देख नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। और हृदय उपगुह्याम, और जो उनका हृदय था उसमें उन्होंने भगवान को आलिंगन कर लिया। देख नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने दिल में मानसिक रूप से भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, भगवान को आलिंगन कर लिया। हृदय उपगोयमम अदाद अवस्थित, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में पहुंचे हैं तो द्वारका के रानियों ने, जो भगवान के बाहर जाने के कारण सादे वस्त्रों में बैठी हुई थी तपस्या के भाव में, पुत्रों को भेजा कृष्ण को गले लगने के लिए, और स्वयं आंखें बंद करके अपने हृदय में ही भगवान को आलिंगन किया। ऐसे भीष्म पितामह के लिए लिखा है, सर सैया के ऊपर सोए हुए आंखें बंद कर कर श्री कृष्ण को अपने हृदय में ही ध्यान में उसका ध्यान करने लगे। तो ये बहुत अच्छा साधन है, भगवान के चरणों को लपट जाना अपने हृदय में। तो यहाँ लिखा है आदि राजा पृथु, आंखें अश्रुओं से भरी हुई थी, गला रुंध गया था, इसलिए न देख पा रहा था, न पूरी तरह से बोल पा रहा था, परंतु उन्होंने अपने हृदय में खड़े खड़े भगवान को आलिंगन कर लिया और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब यहाँ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं पहले भगवान ने की कृपा, क्या भगवान ने कृपा की कि भगवान अपने प्रोग्राम को, जाने के प्रोग्राम को परिवर्तन कर दिया, रुक गए। और अब लिखा है अब पृथ्वी की अद्भुत भक्ति का जो है वर्णन हो रहा है। तो पृथ्वी अपनी अद्भुत भक्ति भाव में विभोर हो गए, अष्ट सात्विक भाव हो गए, भगवान को हृदय में गले लगा लिए। तो भगवान कृपा करते हैं तो भक्त की भक्ति भी अति अद्भुत होती है। प्रभुपाद जी आदि राजा की परिभाषा देते हैं कि ब्रह्म संहिता में जैसे भगवान को आदि पुरुष कहा गया है, ऐसे पृथ्वी को आदि राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक उदाहरण राजा थे, आदि राजा है, उदाहरण राजा है, बहुत बड़ा भक्त है और भक्त के साथ साथ विश्व विजेता है, पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और अपने राज में कोई भी दुष्ट पापी नहीं रहने दिया, सबको सुधार दिया। इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र के समान वीर थे। इंद्र के समान वीर क्या, इंद्र उनके चरणों में प्रणाम करने आ गया था, इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा चुराने में असमर्थ था। पृथ्वी के पुत्र ने ही इंद्र को भगा दिया था, उसका नाम ही, पृथ्वी के पुत्र का नाम ही है अश्वविजय। घोड़े को वापस लेके आया इंद्र से। तो उसके पृथ्वी महाराज की महानता का वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रजा को सुरक्षा दी, पुत्र के आंखें जैसे पलकों को सुरक्षा, पलके जैसे आंखों को सुरक्षा देती है, ऐसे पृथ्वी महाराज ने अपनी प्रजा को सुरक्षा दी। और क्या सुरक्षा क्या दी कि उनको सारे शुभ कर्मों में, भक्ति के कर्मों में भगवान के लगा दिया, उनसे एक पैसा भी कर के रूप में नहीं लिया जिससे उन्होंने स्वयं कुछ भोग किया हो, परंतु जो लिया आपत्काल में उनकी सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लिए कि हमने पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया, करोड़ों अरबों रुपये भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए आए, लेकिन हमने एक फूटी कोड़ी भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में नहीं लाया। जो चीजें भगवान के लिए मिली भगवान की सेवा में लगाया, भगवान के भव्य मंदिर बनाए, गौशालाएं खोली, पुस्तकों का छापने का कार्य किया, एक पैसा भी व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने इंद्रिय भोग के लिए उपयोग में नहीं किया। और यहां लिखा है पृथ्वी महाराज ने एक पैसा भी किसी से कर लेके भोग नहीं किया, जो कर लिया आपत्काल में प्रजा के ऊपर ही खर्च किया। बहुत प्रभुपाद ने ऐसे अपने मुख से कहा है एक बार। अब प्रभुपाद जी कहते उनकी आपत्काल में रक्षा की, आपत्काल क्या है, या जिसको कहा जाए कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब है ऐसे कोई आपत्काल, कोई ऐसे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा आपत्काल क्या है? प्रभुपाद ने यह अद्भुत एक परिभाषा लिखी है आपत्काल की। भगवत बेमुख अगर समाज हो जाए तो ये सबसे बड़ी कैलेमिटी है, सबसे बड़ी कैलेमिटी, सबसे बड़ी कहा जाए कि दुर्घटना, सबसे बड़ा आपदा है कि लोग भगवान से बेमुख हो जाएं। बोला क्यों? बोला जो भगवान से बेमुख हो जाएगा वो पाप कर्म में लगेगा, और जो पाप कर्म में लगेगा, फिर प्रभुपाद जी कहते पाप कर्म कौन से, पाप कर्म प्रभुपाद ने लिखा है व्यभिचार में लगेंगे, व्यसन करेंगे, नशे में लगेंगे, पशु हत्या करके मांस आहार खाएंगे और जुआ करेंगे। और राजा के ऊपर दायित्व है, अगर इनको नहीं सुधारेंगे तो राजा के राज में बड़ी आपदा आएगी। ये प्रजा का पाप संसार के अंदर बड़ी समस्या लाएगा, और राजा ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा कर लेना शुरू करेगा और समस्याएं क्या आएंगी, प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे थे भगवद गीता के तात्पर्य में लिखा है कि ना, इसी में सारी भागवत में आगे आएगा, राजा अगर प्रजा को धर्म पे नहीं लगाता है तो प्रजा के पाप का छठा हिस्सा राजा को दंड के रूप में नरक में भोगना पड़ेगा। पाप करेगी प्रजा और छठा हिस्सा उसका भोगना पड़ेगा राजा को, और ऐसे पुण्य करेगी प्रजा तो छठा हिस्सा भी राजा को मिलेगा। तो राजा अपनी प्रजा को पुण्य में इसलिए लगाते थे कि एक तो राजा को लाभ होता था, पुण्य मिलते थे, प्रजा का छठा हिस्सा। ऐसे लिखते हैं, किसी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओगे तो ब्राह्मण के जप तप का, पूजा पाठ का, उस दिन का छठा हिस्सा आपको मिलेगा। इसलिए समाज में अभी भी साधु संत का आदर है, क्योंकि उनके तप का छठा हिस्सा हमको मिलता है जब हम सेवा करते हैं। तो राजा के लिए ये बहुत एक रामानुज आचार्य के जीवन की घटना में, उसके गुरु से किसी दिग्विजय ने उसको हराया था, कोलाहल नाम के बहुत बड़े विद्वान ने, और उससे हर समय वो कर लेने आता था, जिससे हराता था उससे कुछ साल में कर लेता था। तो रामानुज आचार्य ने लगा कि मेरे गुरु को कैसे हरा सकता है, छोटा बालक रामानुज चला गया उधर और राजा को कहा कि आपके कोलाहल को बुलाओ, मैं उसके साथ अर्थवाद करूंगा। राजा की रानी ने देखा कि ये बड़ा प्रतिभाशाली 15-14-12-13 साल का लड़का है, लेकिन बड़ा विद्वान लग रहा है, ये आपके बड़े पंडित को हरा देगा। राजा ने कहा नहीं हरा देगा, नहीं हरा सकता है। बोला हरा देगा, बिठाओ। उन्हों की राजा रानी की आपस में शर्त हो गई, कोलाहल आया। बच्चे को देख के कहा, अरे बच्चा क्या बात करोगे हमारे साथ, तेरा गुरु भी हार चुका है, पहले तुम प्रश्न पूछो। तो बच्चे ने कहा, आप मैं प्रश्न पूछता हूं और आप इसका खंडन करो। पहला प्रश्न पूछा कि हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, अब इसका खंडन कैसे करें, राजा को कैसे कहे कि राजा धर्मात्मा नहीं है, खंडन कर नहीं पाया, परेशान हो गया। अब राजा बैठा है, उसी की सभा के अंदर बात हो रही है, और रामानुज आचार्य ने प्रश्न पूछा कि हमारा राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है, अब उसका खंडन कैसे करें। बोला दूसरा प्रश्न पूछो। बोला हमारी महारानी बड़ी पतिव्रता है, अब इसका खंडन करो, अब कैसे कहे कि रानी पतिव्रता नहीं है। कोलाहल पानी हो गया। बोला तीसरा प्रश्न पूछो। बोला तेरी माँ बांझ है, ये तो बेटा तो सामने बैठा है, फिर माँ बांझ कैसे हो गई, तेरी माँ बांझ है, ये कोई प्रश्न है। उत्तर नहीं आया, कोलाहल हार गया, सभा में हाहाकार मच गया, रानी ने जय जयकार की कि बच्चा मैंने कहा जीतेगा। अब राजा ने कहा आप ही तो खंडन करो अपने प्रश्नों का, ये तब हारा मानेंगे। तो रामानुज आचार्य ने कहा, महाराज आप तो धर्मात्मा हैं, परंतु प्रजा पाप करेगी उसका छठा हिस्सा तो आपको भोगना पड़ेगा ना, तो धर्मात्मा कैसे हुए, प्रजा के पाप को तो आपके गले में बांधना ही पड़ेगा। बोला फिर रानी पतिव्रता है, इसका खंडन कैसे करोगे। महारानी पतिव्रता है, धर्मात्मा है, परंतु राजा के शरीर में भगवान और देवताओं का आवेश होता है, दावत भगवान का प्रतिनिधि राजा, देवताओं का आवेश उसके अंदर होता है। तो इतने सारे राजा के शरीर में भगवान और देवता रहते हैं, तो रानी पतिव्रता होते हुए भी राजा की पत्नी है, तो सारे उनके शरीर में उनकी पत्नी हुई ना, सब आश्चर्य से। बोला फिर ये इसकी माँ बांझ कैसे है। बोला मनु संहिता में लिखा है, जिसका एक ही बच्चा है उसको बांझ ही समझना चाहिए। ये मनुसंहिता का श्लोक है। तो यहाँ ये बात हमको इसलिए याद आई कि यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ी आपदा संसार में है, लोग ये चार पाप कर्म करते हैं, भगवान से बेमुख होते हैं तब ये चार पाप कर्म करते हैं। भगवान से बेमुख होना मतलब धर्म से बेमुख होना, क्योंकि भगवान रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान ही साक्षात धर्म का स्वरूप है। तो धर्म के ये चार विनाशक पाप हैं जो धर्म का नाश करते हैं। तो भगवान से बेमुख होगा, पापी बनेगा, चार पाप करेगा, और इन चार पापों के कारण बहुत बड़ा संकट आएगा राजा के ऊपर, और प्रजा से ज्यादा कर लेना पड़ेगा। परंतु पृथु आदि राजा ने ऐसा काम नहीं किया। पृथु महाराज जैसा कोई शुद्ध भक्त राजा होगा, प्रभुपद लिखा है प्रथम श्रेणी का महाराजा होगा, तो हमको पृथु के व्यवहार से ये पता लगता है वो कितना आनंदित है भगवान को देखकर। ये है उत्तम भक्त की पहचान, आनंद में है बाहर से भी अंदर से भी। बाहर से आंखों में अश्रु है, गला रुंध गया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान के नाम लेते हुए, नयनम गलद श्रुधार या वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम विपु कदा वपु कदा तव नाम ग्रणे भविष्यति। भगवान सामने हो या भगवान का नाम, आंखों में अश्रु, गला रुध जाए, रोमांच हो जाए, ये कब होगा? और पृथु महाराज में ये सब हो रहा था, और अंदर से भगवान को आलिंगन किया था, और बाहर से ये सब दिखने में आ रहा था। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज की बात, प्रभुपाद जी उस दिन की बात कर रहे हैं जब ये तात्पर्य रात को लिख रहे हैं। मुंबई में, बॉम्बे के पत्रों में आया है। क्या आया है? बोला सरकार ने जो गांधी के, अंग्रेजों को जब कहा था कि भारत छोड़ जाओ आंदोलन चला था, उस जमाने से जो शराब बंद था, सरकार ने उस कानून को रद्द कर दिया है, और आज से सरकार शराब को बेचेगी। प्रभुपाद कहते हैं आज ये बॉम्बे में सरकार की तरफ से घोषणा हुई है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इससे पहले चोरी छुपी लोग शराब घरों में बनाते थे, और प्रभुपाद ने लिखा है कि जो पब्लिक के, जो सामान्य जनता के लिए शौचालय आदि है ना, वहां जाके बेचते थे। वैसे शराब शब्द का अर्थ है सड़ा हुआ पानी, आपका मतलब होता है पानी, शराब मतलब सड़ा हुआ पानी। ये सब कचरा सड़ जाता है, उससे शराब बनाते हैं, वो फलों को सड़ा के या किसी से भी। प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले ऐसी जगहों पे लोग चोरे छुपे शराब बेचते थे, और सरकार उसको रोक नहीं पाई, तो अब कहा कि हम ही ऐसी शराब का धंधा सरकार शुरू कर दिया, और आज से उन्होंने अपने आप शराब बनाना और सस्ते भाव में पब्लिक को बेचना शुरू कर दिया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं जो पहले ऐसे शौचालयों के पास बिकता था, अब सरकार ने सरेआम बेचना शुरू किया। अब ये पाप सरकार ही कर रही है, तो बताइए कि क्या प्रजा का क्या हाल होगा? ऐसी प्रभुपाद जी ऐसे सरकारें जब हो गई, और ऐसा जब पाप होगा, तो संसार में युद्ध होगा, अकाल आएगा, भूखमारी होगी, भूकंप होगा, और ऐसे और भी कई आपदाएं आती रहेंगी। आजकल का सुनामी आएगी, कोरोना आएगा, ये प्रकृति का नियम है। भगवान के कानून में हस्तक्षेप करेंगे तो ये सब कुछ होगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा धर्म की गिलानी इसी को कहते हैं, ये धर्म की गिलानी है। और एक किसी समय में प्रकृति ऐसा दंड देती है कि सबकी आंखें खुल जाती है, जैसे आजकल सब पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। और प्रभुपाद ने इतना नहीं लिखा है, उस समय लिखा है, इसका मतलब प्रभुपाद ये 71 में लिख रहे हैं, 71 में ये लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस समय हम देख रहे हैं प्रकृति ने, अभी अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, ये 71 की वार की बात है, और 14 दिन ये युद्ध चला था। इसका मतलब प्रभुपाद जी बॉम्बे थे तब, हमारा बॉम्बे में कोई मंदिर नहीं था, वो आकाश गंगा में इस्कान का सेंटर था और उसके नीचे ही पाकिस्तान एम्बेसी थी, उस वक्त की एम्बेसी वहां हुआ करती थी। और ब्रह्मानंद उस वक्त में कराची में प्रचार करने आए थे, उस समय हम कराची में थे, वो हमारा 12वीं पास करके हम मेडिकल के एजुकेशन के प्रतीक्षा में थे कि हमारी एजुकेशन हो, एंट्री होगी MBBS में। और उस वक्त में जो जो युद्ध के समय ब्लैक आउट थी, उस समय ब्रह्मानंद वहाँ प्रचार करने के प्रभुपाद जी के कहने के ऊपर पाकिस्तान में कराची, वो एंटर हुआ था बाय फुट तुर्की से होता हुआ, उस रास्ते से पंजाब में, तो उसके मुंह के ऊपर लोगों ने थूका यूनिवर्सिटी में प्रचार करते हुए, लिखता है स्वयं। कराची में कुछ हिंदू के समाज के अंदर जो पुराने मंदिर है वहाँ प्रचार कर रहा था। प्रभुपाद लिखते हैं 14 दिन ये युद्ध चला और कितने आदमी मारे गए, कितने धन का विनाश हुआ, इसकी गिनती नहीं की जाती, की जा सकती है। और सारा विश्व परेशान हुआ, कितना परेशान हुआ विश्व सारा। अमेरिका का वहाँ से एक जहाज़ चला, रशिया का जहाज़ दूसरे तरफ से चला, एक बहुत बड़ा। और उसी समय 71 में ये बांग्लादेश अलग हुआ, तो ये पूरी दुनिया के अंदर भूंचाल आ गया था। प्रभुपाद का ये है पाप का परिणाम जो दुनिया सारी ने देखा। अब प्रभुपाद जी लिखते क्या हैं, ये पाप का परिणाम है। अब कहते कृष्ण भावना अमृत संग, लोगों को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए और सिद्ध बनाने के लिए है, पाप से बचाने के लिए पवित्र करना है और भक्ति सिखा के सिद्ध करना है, ये कृष्ण भावना का उद्देश्य है। अगर कोई प्रभुपाद कहते पूरा शुद्ध ना हो, थोड़ा भी शुद्ध हो जाए, आधा भी शुद्ध हो जाए, जैसे भागवत में लिखा है नष्ट प्राय यीशु अभद्र, प्राय पाप नष्ट हो जाए तो कुछ रह जाए कोई बात नहीं, तो कृष्ण भावना में कम से कम उसका रजोगुण और तमोगुण जिसका प्रभाव है काम और लोभ, ये कम हो जाएगा और जनता की भौतिक बीमारी का बुखार कम होने लगेगा। वो थोड़े से दुख से निवृत्त होकर सुख का अनुभव कर सकेंगे। और ये संभव कैसे है, जब हम शुद्ध भागवत का संदेश विश्व भर में ब्रॉडकास्ट करें। श्री प्रभुपाद ने भारत में बैठे हुए पहले स्कंद भागवत के अंदर इस्कान की स्थापना से पहले ही लिखा था कि भागवत का संदेश विश्व में प्रचार न करने के कारण भारत के इस एक कमी के कारण सारा संसार अशांत है। संसार की अशांति का कारण भारत के ऊपर है क्योंकि उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार नहीं किया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत धर्म का प्रचार या कृष्ण भावना का प्रचार केवल एकमात्र साधन है जिससे लोगों का हृदय शुद्ध किया जा सकता है, पाप से बचाने से और भक्ति सिखाने से उनको सिद्ध किया जा सकता है। नहीं तो बहुत बड़ा आप कारखाने लगाओ, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है सुरक्षा के लिए सेना के ऊपर लगाओ, ये सारा धन बंदूक के गोलियों के रूप में जल जाता है, कुछ उसका लाभ नहीं होता है, सब समाप्त हो जाता है, प्रॉपरली गन पाउडर के रूप में सब खत्म हो जाता है। दुर्भाग्य से इतना खर्च कर रहे हैं गोला बारूद के ऊपर, दुर्भाग्य तो ये है अगर उनको कहते हैं कि थोड़े उधार हो जाओ, कृष्ण भावना के कार्य को संसार में प्रचार करने के लिए सहायता करो तो बिल्कुल उसके लिए मना कर देते हैं और बहुत रिलक्टेंट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये प्रभुपाद जी का 71 के भावनाएं हैं उस वक्त के संसार के समस्याओं को, संसार के समस्याओं को राजाओं की कहा जाए के शासन में भगवत शिक्षा के अभाव के कारण प्रजा में जो पाप और उसका परिणाम संसार भोग रहा था उसके ऊपर ये टिप्पणी लिखी है। और उसका उदाहरण दिया है कि शराब का एक तरफ से पुराना कानून रद्द करके और बेचना शुरू किया और लड़ाई का सामने से लाखों का खर्चा भरना पड़ गया और कितने आदमी मरवाने और मरने पड़े। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इतना सारा खर्चा सरकार सब चीज़ों के ऊपर करती है लेकिन भागवत धर्म के प्रचार के लिए न सरकार न धार्मिक या धनवान सहायता कर पा रहे हैं। ये कार्य बड़े स्तर के ऊपर होना चाहिए ताकि कम से कम कुछ थोड़े भी पवित्र लोग होंगे तो संसार में सुख शांति का अनुभव किया जा सकता है। परंतु जैसी परिस्थिति आज है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो समय समय के ऊपर ऐसी आपदाएं आती रहेंगी, ऐसे युद्ध होते रहेंगे और उसका वो है कृष्ण भावना को न स्वीकार करने का परिणाम। परिणाम क्या है? कृष्ण भावना को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उसका यही परिणाम है। अब 22वां श्लोक आज पढ़ लेते हैं। 23वें में पृथु महाराज की प्रार्थना है, वो हम फिर आगे शुरू करेंगे। अथ अवमृज्याश्रु कला विलोकयम् अतृप्त दृग गगोचरम आह पुरुषम पदा स्पृशंतम क्षितिम अंश उन्मित उन्नते विन्यस्त हस्तागरम हस्त अगरम पुर अंग विदिश विदिश्वत विधिवशः विद्वेषः। आ क्या देख रहा है प्रथु जी? अथ अवमृह, अथ उसके उपरांत अवमृज्य, अवमृज्य का मतलब अपने आंखों के आंसू को साफ किया। अवमृज्य अश्रु कला, आंखों से जो आंसू बह रहे थे उनको अपने हाथ से पृथु महाराज ने साफ किया। अतृप्त दृग गोचरम, अभी तक भगवान को दर्शन कर रहा था तो आंखें तृप्त ही नहीं हो रही थी। और आंखों के द्वारा भगवान के सुंदरता को पीते पीते दृग गोचर, दृग गोचर का मतलब भगवान के आंखों के सामने भगवान है लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहा था। तो कैसे भगवान दिख रहे थे? अतृप्त दृग गोचरम आहा पुरुषम, पुरुष को देखा जो सामने खड़े थे विष्णु। पाद स्पृशंतम क्षतिम, उनका चरण धरती को लग रहा था, इसी के ऊपर तात्पर्य लिखा है। भगवान के चरण कमल धरती को क्षति कहते हैं, धरती को। पाद स्पृशंतम, स्पृशंतम क्षितिम अंश उन्मते, थोड़े से और पांव धरती पे लगने वाले थे इसलिए भगवान ने अपने हाथ को विन्यस्त हस्ता अग्रम, भगवान अपने हाथ को जो गरुड़ खड़ा था, उरंग विद्विष्ट जो सर्पों का शत्रु गरुड़ जिसके ऊपर भगवान चढ़ के आए थे उसके कंधे के ऊपर भगवान ने सहारा ले लिया। क्यों ऐसे किया? तो श्लोक का अर्थ क्या है? परम पुरुष भगवान के चरण बस धरती को छूने ही वाले छू रहे थे और गरुड़ के कंधों के ऊपर जो जो सर्पों का शत्रु है भगवान ने सहारा लिया। पृथु महाराज ने आंखों को आंसुओं को हाथों से साफ करके भगवान को देखने का प्रयास किया परंतु तृप्त नहीं हो रहा था। और फिर पृथु महाराज प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, प्रभुपाद ने भी वही भाव दिया कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान के या देवताओं के चरण धरती के ऊपर नहीं लगते, लेकिन यहां भगवान पृथु महाराज के भाव से इतने भावभीत हो गए कि उनके चरण धरती को लगने लगे और ऐसे धरती के पापमय धरती के ऊपर पापी लोग रहते हैं, वहां पुण्य आत्मा का पांव नहीं लगना चाहिए, तो भगवान ने गरुड़ का सहारा ले लिया। ये अति भगवान की कृपा के लिए भगवान ये भूल गए कि मेरे को धरती के ऊपर चरण नहीं रखना चाहिए, और वो थोड़े लड़खड़ाए तो गरुड़ का सहारा लिया, ऐसे चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुख्य बात इस श्लोक में है कि भगवान के चरण धरती के ऊपर लग रहे थे। वैसे देवताओं के, प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवल भगवान के नहीं, जो ऊपर लोकों में रहते हैं, ब्रह्म लोक से लेके स्वर्ग लोक तक, ब्रह्म लोक से स्वर्ग लोक तक, भूर लोक, भुव लोक, स्व लोक, सबके चरण जब धरती पे ऊपर आते जरूर है, वो वहाँ इतने उन्नत है वो आध्यात्मिक दृष्टि से कि उनके चरण कभी भी पृथ्वी के ऊपर नहीं लगते, वो अपने आप को हल्का रखते हैं, उनका उनके शरीर का भार होता ही नहीं, पृथ्वी के जो ग्रेविटी है उससे वो आकर्षित नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि में ऊपर ही रहते हैं। वो एक बात हमको याद रहा, ये सत्संग हो रहा था तो वहां से चोर गुजरे, भाग रहे थे चोर पुलिस के भय से, तो जहाँ सत्संग हो रहा था वहां से जाए, तो उस वक्त एकदम सबने कान में उंगलियां डाल ली, एक को पांव में लगा कांटा, तो कांटा निकालने लगा तो थोड़ी देर के लिए कान खुले हो गए, और उस वक्त सत्संग करने वाले ने कहा कि देवता अगर धरती पे आएगा तो उसका चरण धरती पे नहीं, धरती को स्पर्श नहीं करेगा, तब तक कान बंद कर लिए। ये डाकू के भी अपने नियम होते हैं कि सत्संग का एक शब्द भी कान में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। यहां से डाकू जाते हैं आगे, तो डाकू को पकड़ने के लिए सरकार ने षड्यंत्र किया, किसी को देवी बनाया और देवी नाच रही है, और ये डाकू तो देवी के पुजारी है, सब वहां मगन होके खड़े हो गए। ये जो एक शब्द सुन के आया था कथा से कि देवता के चरण तो धरती पे लगते नहीं है, उसने देखा ये जो नाच रही है, जो दुर्गा देवी बनके, ये जो दुर्गा देवी बनके नाच रही है, इसके चरण तो धरती पे लगे हुए हैं। उसको सत्संग की बात आ गई याद, उसने कहा ये देवता नहीं हो सकता, वो वहां से भाग गया। तब तक सरकारी लोग आए और बाकी सब चोरों को पकड़ गए। इसने कहा एक दिन साधु के वचन सुने मैं सरकार से बच गया, सचपच अगर सत्संग करता तो भगवान यमराज के दंड से भी भाग जाता, बच जाएगा। तब से वो साधु बन गया। कैसे साधु बन गया ये कथा तो आज नहीं कर रहे हैं, परंतु कि देवताओं के चरण धरती पे नहीं लगते हैं ये मुख्य बात है। सीता माता के लिए भी जब अशोक वाटिका में है तो अमृत इंद्र ने भेजा था कि कहाँ कहीं यहाँ आपदा ना हो, कुछ खाना पीना खाएगा ही नहीं इनका, तो जो देवता अमृत लाए थे उसका चरण भी धरती पे नहीं लग रहा था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके चरण धरती पे नहीं लगते, वो आते जरूर हैं लेकिन चरण नहीं लगते, वो अपने आप के आपको बिना वजन के बना देते हैं, वो धरती को छूने के बगैर खड़े सकते भगवान विष्णु। अब प्रभुपाद जी कहते भगवान विष्णु हमारे इसी लोक में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, एक श्वेत द्वीप में वैकुंठ है ध्रुवलोक के पास या ध्रुवलोक ही, वहां भगवान रहते हैं क्षीरोदक्षायी विष्णु, जिसको प्रार्थना करने जाते हैं जब आपदा आती है धरती के ऊपर, तो वो जो विष्णु है तो वो इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, और इसीलिए वो कभी कभी देवताओं की तरह धरती को पांव नहीं छूते हैं उनके। वो एक सामान्य धरती के देव की तरह व्यवहार करते हैं। तो जब वो पृथ्वी महाराज के वहां पहले प्रकट हुए तो उनके चरण धरती पे नहीं लग रहे थे, परंतु जब पृथ्वी महाराज के भक्ति के भाव से प्रभावित हो गए, उनके चरित्र को देखा, तो एकदम वो परम पुरुष भगवान जो नारायण वैकुंठ वाला है उस भाव में आ रहे, और उनके हृदय में पृथ्वी के लिए इतना प्रेम और स्नेह उत्पन्न हुआ कि वो धरती के ऊपर चरण उनके छूने लगे। और जब धरती पे चरण छूने लगे तो उनको तो आश्चर्य लगा, क्योंकि धरती पे चरण रखने का उनका स्वभाव ही नहीं है, तो वो गरुड़ का सहारा लेने लगे और गरुड़ के कंधे के ऊपर अपना हाथ रख लिया। क्यों रख लिया? कि कहीं पांव डगन मगा न जाए और गिर न पड़े, क्योंकि भगवान धरती के ऊपर खड़े होने के आदि नहीं। और ये सारे लक्षण हैं भगवान के और पृथ्वी की महान भक्ति के, जिसने भगवान को जाने से रुकवा दिया और धरती के ऊपर पांव लगाने भगवान ने लगा दिए पृथ्वी के प्रेम के कारण। क्योंकि पृथ्वी महाराज देखने में असंतुष्ट था तो भगवान ने कृपा करके वहां खड़े हो गए और पृथ्वी महाराज प्रार्थना करने लगे और कहेंगे तो आप वर देना चाहते थे ना, मेरे को वर देना है तो करोड़ों कान दे दो, आपकी कथा सुनता रहूं। आप भी ऐसी वरदान मांगे कि ये कथा हमारी निरंतर चलती रहे। आगे जो कृष्ण की इच्छा, कथा को यह विराम देते हैं। पृथ्वी महाराज की प्रार्थना का शुभारंभ अगली बार करेंगे। पृथुर्वाच वरान विभूत्वाद वरदेश्वराद बुद्ध कथम वृणिते गुण विक्रियात्मना महात्मनाम ये नारकाणाम अपि संति देहिनाम तानीश केवल्य पते वृणेना च। आप वरदाता है, कुछ भी वर दे सकते हैं, परंतु संसार के सुख का वर मांग के जो नरक में भी सबको मिलता है, या ज्यादा से ज्यादा कर्मी लोग स्वर्ग मांगते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्म में लीन मांग मुक्ति का वर मांगते हैं, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, इसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। आपने कहा वर मांगो ना, ये मेरे को वर चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से लोग मांगते हैं, भक्ति तो तीनों गुणों से ऊपर है। तो ये पृथ्वी महाराज का भाव है। यहाँ कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हाँ जी, हाँ हरे कृष्णा। मनोज जी बोलिए। हाँ मनोज जी बोलिए। हरे कृष्णा सक्सेना जी। हरे कृष्णा, आपका है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, 100 साल सदा श्री कृष्ण की कथा सुनते रहो। हरि बोल। हरे कृष्ण। बस बस कृष्ण की कृपा से सब सदा सदा मन भगवान में। वो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कृष्ण मति रस्तु, मति कृष्ण में लगी रहे बुद्धि, बस यही आपके जन्मदिन की आशीर्वाद। महाप्रभु के वचन आपके लिए। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।